प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल का गहराई से अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कई गूढ़ बातों को जान सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाइबल का विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हमारे वक्ता आज के प्रवचन को आरम्भ करें, सुनते हैं ये मधुर गीत।
बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से न डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे।
अनुग्रह, कृपा और शांति आपको हमारे जीवित उद्धारक मसीह यीशु एवं सर्वोच्च पिता परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती रहे। जी हाँ, हम सर्वोच्च परमेश्वर को अपना पिता कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये एक ऐसा अधिकार है जो कि हमको हमारे उद्धारक मसीह यीशु की ओर से प्रदान किया गया है। मसीह यीशु पर विश्वास करके उनको अपना उद्धारक बनाकर हमने उनसे ये अधिकार प्राप्त किया है और अब इसके साथ हमको अनेक अनेक अमूल्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई हैं। और एक सुविधा यही है, उनका जीवंत, अकाट्य तथा अत्यंत प्रभावशाली वचन और उसका संदेश हम तक निशुल्क लाया जा रहा है। अब आवश्यक यह है कि हम इसे मन के शुद्ध, उदार एवं उपयुक्त भाव में स्वीकार करें तथा परमेश्वर का अनंत उद्देश्य पूर्ण करें। यह इस प्रार्थना के द्वारा संभव होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी अनंत स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपने हृदय के गहनतम आभार की भेंट लेकर हम आपके चरणों में उपस्थित हैं। आपने हम अयोग्य प्राणियों पर कृपा दृष्टि की और अपना जीवंत वचन हमारे लिए आरक्षित कर रखा है, जो आपका अपार अनुग्रह है। प्रभु, हम चाहते हैं कि आपका दिया हुआ ये संदेश हमारे जीवन पर इच्छित प्रभाव छोड़े और हम इसके द्वारा आपके सुयोग्य सेवक प्रमाणित हों। प्रभु, अब हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस वचन को हमारे लिए सजीव बनाकर इन सत्यों को स्थायी व्यवहारिक स्वरूप प्रदान कर दें। यह समय आपके द्वारा पवित्र किया जाए, हमें सुनने के कान, आज्ञाकारी हृदय एवं एक एकाग्र चित्त प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। इन सब में प्रभु परमेश्वर महिमान्वित मात्र आप ही हों। मसीह यीशु हमारे जीवित उद्धारकर्ता के नाम में, आमीन। पत्रस प्रेरित ये तथ्य बड़े आत्मविश्वास तथा निश्चय के साथ स्पष्ट कर रहे हैं कि समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर के सनातन पवित्र आत्मा की प्रेरणा एवं संचालन में लिखा गया है। पवित्र जन अर्थात परमेश्वर के इस कार्य के लिए अलग किए गए जन पवित्र आत्मा के आंदोलन के द्वारा संचालित किए जाते थे और उनकी लेखनी से ये पुस्तकें हमारे लिए प्रस्तुत की गईं। पवित्र आत्मा का आंदोलन संचालन कुछ ऐसा ही होता है जैसे समुद्र में पाल वाली नौका वायु प्रवाह के द्वारा आगे बढ़ने के लिए छोड़ दी जाती है। पवित्र आत्मा भी इन अलग किए गए पात्रों को इसी प्रकार संचालित किया करते थे। अब आइए आपकी स्मृति ताजा करते हुए आगे बढ़ें। आपको स्मरण होगा कि ये पत्रस प्रेरित की मृत्यु के ठीक पहले लिखा गया लेख है। इसमें वह भी ठीक पौलुस प्रेरित के जैसे सत्य शिक्षा से विमुखता के विषय चेतावनी दे रहे हैं। वह पवित्र शास्त्र की महत्ता को दोहराकर प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हें यहाँ ये आवश्यक लगा कि वह मसीहों पर अपना निर्विवाद मत बलपूर्वक प्रस्तुत करें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अस्तित्व में आया है। दोनों ही प्रेरित एक ही विचार बलपूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय श्रोता, कैसी सुंदर है यह स्थिति। प्रभु परमेश्वर प्रत्येक सेवक को चुनकर उसका उपयोग किया करते हैं। इसमें परमेश्वर उस सेवक की शैली को परिवर्तित नहीं होने देते। इसमें वह उस सेवक के व्यक्तित्व की झलक आने से भी नहीं रोकते। इन सब के साथ परमेश्वर का वचन इन सेवकों के द्वारा पत्रक पर अंकित किया गया। अब देखिए ना, पौलुस प्रेरित एक विद्वान थे, अत्यंत उच्च शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञ। उनकी यूनानी भाषा परिष्कृत एवं त्रुटिहीन थी। उसमें अलंकार थे, सुंदर प्रवाह था। किंतु पत्रस तो मूल में मछुए थे, वो शिक्षित भी नहीं थे। यूनानी भाषा उन्हें सीखनी पड़ी थी। उनकी लेखन शैली को परिष्कृत त्रुटिहीन नहीं कहा जा सकता। फिर भी परमेश्वर ने दोनों ही प्रेरितों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया कि ये वही लिखें जो वो अर्थात परमेश्वर उनसे लिखवाना चाहते थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो परमेश्वर उनसे लिखवाना नहीं चाहते थे। अर्थात यदि परमेश्वर स्वर्ग से आज कुछ कहना चाहें तो वह ठीक यही कहेंगे जो इन प्रेरितों के द्वारा उन्होंने 2000 वर्ष पूर्व कहा था अथवा लिखवाया था। काल और समयहीन परमेश्वर का मानव के लिए वही संदेश है जो पहले था। परमेश्वर ने अपना वचन हम तक विभिन्न व्यक्तित्व वाले पात्रों द्वारा पहुंचाया। उनके व्यक्तित्व भिन्न थे, उनके कौशल भिन्न थे। यही कारण है कि यह एक मानव ग्रंथ भी है और परमेश्वर ग्रंथ भी। पृष्ठ पर अंकित परमेश्वर का वचन जैसे मसीह यीशु है, जीवित वचन है, दोनों पक्षों के साथ, मानवी भी और दिव्य भी। वो अर्थात मसीह यीशु मृत की कब्र के सामने खड़े होकर रोते हुए भी देखे गए और साथ ही उन्होंने उस मृत को उज्जीवित भी कर दिखाया। वह कुएं पर थकित और तृषित बैठ गए थे, किंतु फिर भी वो ये प्रतिज्ञा कर सके कि वो वही हैं जो एक दीन पापी को जीवन का जल प्रदान कर सकते हैं। मसीह यीशु वही हैं जो नाव में निश्चिंत होकर सो सकते थे, जबकि चारों ओर से नाव भयानक आंधियों में पड़ी हुई थी, और वही थे जो डांटकर आंधी को शमित कर सके, क्योंकि ये उनका अधिकार था। हां, वो मानव थे, किंतु वो परमेश्वर भी थे, और हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल मानव भी है, दिव्य भी। यहां पत्रस प्रेरित सूचित कर रहे हैं कि हमारे पास नबुवत का और अधिक निश्चित एवं प्रमाणित वचन है। इस प्रकार पत्रस प्रेरित ने हमारे समक्ष एक सुदृढ़ चट्टान रख दी है, हमारे पांवों के नीचे दृढ़ और सुनिश्चित चट्टान की नींव पवित्र शास्त्र, जो कि हमारे हाथों में थमा दिया गया है, पूर्णतः विश्वास योग्य। तब क्या हमको आश्चर्य होना उपयुक्त है कि इस पवित्र शास्त्र पर शत्रु निरंतर प्रहार करता चला आ रहा है। ऐसा क्यों? यह भी स्पष्ट ही है, यदि शत्रु किसी रीति से नींव पर प्रहार कर उसे नष्ट कर सके, तो उसे ज्ञात है कि संपूर्ण भवन चरमराते हुए धराशायी हो जाएगा। पवित्र शास्त्र वह ठोस नींव, ठोस आधार है, जिस पर हमारा अमूल्य विश्वास आधारित है। हमारी आंखें सदैव प्रत्येक परिस्थिति में विश्वास योग्य नहीं कही जा सकती, आंखें धोखा भी खा सकती हैं। आपने शायद देखे होंगे वे चित्र जो आंखों में भ्रम डाल दिया करते हैं, जैसे उनमें सीधी रेखाएं भी वक्र दिखाई देती हैं, एक ही आकार की रेखाएं छोटी अथवा बड़ी दिखाई देती हैं। यही कारण है कि पौलुस प्रेरित ने निर्देश दिए थे कि हम विश्वास के आधार पर आगे बढ़े, ना कि दृष्टि के आधार पर। हम ना तो अपनी आंखों पर और ना कानों पर भरोसा कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र के परमेश्वर का वचन होने का सबसे विश्वास योग्य प्रमाण है पूर्ण हो चुकी नबुवतें। जब सर्वप्रथम पवित्र शास्त्र अस्तित्व में आया, तब इसका एक तिहाई नबुवत था। यह ना तो अनुमान था और ना अंधविश्वास। और अब हम देखते हैं कि अधिकांश नबुवतें पूर्ण हो चुकी हैं। किसी ने कहा है, नबुवत वो सांचा है जिसमें इतिहास को ढालकर स्वरूप प्रदान किया जाता है। ये पूर्ण हो चुकी नबुवतें पवित्र शास्त्र के परमेश्वर का वचन होने का सबसे अकाट्य प्रमाण है। पत्रस कह रहे हैं, अब हमारे पास और अधिक सुनिश्चित नबुवत का वचन है। जबकि एक चौथाई नबुवत पूर्ण हो चुकी है, इसका अर्थ यह हुआ कि पवित्र शास्त्र के एक तिहाई अंश का एक चौथाई पूर्ण हो चुका नबुवतें हैं। इतनी परिशुद्धता अर्थात एक्यूरेसी किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अनुमानित है कि पुराना विधान में मसीह यीशु के प्रथम आगमन के विषय 330 नबुवतें थीं, और वे अक्षरशः पूर्ण हो गईं। क्या यह किसी मनुष्य के लिए संभव है? एक उदाहरण से इसे समझें। मान लीजिए कि आज मैं एक पूर्व घोषणा करता हूं कि कल वर्षा होगी, अतः 50-50% संभावना है वर्षा हो सकती है, वर्षा नहीं भी हो सकती। ठीक। अब यदि मैं इसमें एक विचार जोड़ देता हूं, कल 9 बजे वर्षा होगी, यहां भी अनिश्चितता है, अर्थात पुनः 50-50% की। अतः अब पूर्ण घोषणा की पूर्ति की संभावना कुल मिलाकर मात्र 25% ही रह गई। अब यदि इसमें एक और विवरण जोड़ दिया जाए, वर्षा 9 बजे प्रारंभ होकर 12 बजे समाप्त हो जाएगी, तब इसकी पूर्ति सिमटकर मात्र 12.5% रह जाएगी। और यदि आप इसमें एक और विवरण जोड़ दें तो 6.25%। किंतु यदि मैं पवित्र शास्त्र के समान 330 विवरण वाली नबुवतें करूं, तो उन नबुवतों का पूर्ण होना प्रायः 0% हो जाएगा। यहां तो 4 विवरणों में ही संभावनाएं 6.25% रह गई थी। फिर 330 नबुवतें किस प्रकार पूर्ण हो सकती हैं? फिर भी देखिए ना, परमेश्वर के वचन ने ये सारी नबुवतें अक्षरशः पूर्ण कर दिखाई। अक्षरशः पवित्र शास्त्र निर्भीकता पूर्वक असंभवता के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और विजयी होकर बाहर आ गया। प्रिय श्रोता, यह प्रमाण है कि यह परमेश्वर ही का वचन है और कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ें। अध्याय 2, यहां पर भी पत्रस मत शिक्षा से भटकने के विषय उल्लेख कर रहे हैं। ये शिक्षाएं प्रभावशाली प्रतिभावान झूठे शिक्षकों द्वारा प्रसारित की जा रही थी और आज भी यही हो रहा है। मसीह यीशु की प्रखर ज्योति मनुष्यों को विश्व प्रणाली से दूर कर अपनी ओर आकृष्ट करती जा रही है। इसके विपरीत वह शक्ति भी है जो परमेश्वर के लोगों को विश्व प्रणाली की ओर आकर्षित करती रहती है। यहां पत्रस जिस विषय बातें कर रहे हैं वही समय अब हम पर भी आ पड़ा है। देखिए ना, पद 1 में वो कह रहे हैं, इसराइली राष्ट्र में झूठे नबी थे, इसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे। वे गुप्त रूप से घातक मतभेद उत्पन्न करेंगे तथा उस स्वामी को अस्वीकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया है। उस स्वामी को अस्वीकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया है। यहां पत्रस अभिमुख हैं यहूदी मसीहों से। वह यहां उल्लेख कर रहे हैं इसराइली प्रजा का। उन दिनों इसराइल में झूठे नबियों का बाहुल्य था। हमारे मध्य भी आज झूठे शिक्षकों का अभाव नहीं है। वैसे हमारे लिए भय का कोई विषय नहीं है, क्योंकि यदि हम ये स्मरण रखते हुए आगे बढ़ें कि यदि आज कोई भी नबुवत की चेष्टा करता है वह निश्चित रूप से झूठा प्रमाणित होगा। 28 अक्टूबर वाले कोरियन नबियों की दुर्गति आपने कुछ वर्ष पूर्व देख ली है। वे सब के सब निश्चित रूप से झूठे प्रमाणित होते हैं। वे अपने बचाव में क्या कहते हैं? मुंह छुपाने के लिए मात्र इतना ही, हमारी गणना में भूल हो गई थी। यह एकमात्र ऐसी घटना नहीं है, यह तो वर्षों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। शैतान अपना सिर यदा कदा इस प्रकार उठाता ही रहता है और मनुष्य हैं कि इसे भूलते ही चले जाते हैं। यह शैतान के हित में हो जाता है और मसीह समाज एक बार फिर उपहास का विषय बन जाता है। यह बिल्कुल ही आवश्यक नहीं कि हम उन शिक्षकों की उक्तियों पर ध्यान दें, किंतु हाँ, यह आवश्यक है कि आप प्रत्येक शिक्षक को परखें अवश्य, प्रत्येक शिक्षक को। जी हाँ, ठीक इस समय जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूं आप उसे भी परखें। आंखें मूंद कर मेरी बात स्वीकार मत कर लीजिए। इस पर इसलिए विश्वास न कर लीजिए कि यह सब आप एक प्रख्यात रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। परखिए, अच्छी तरह परखिए, एक बार फिर परखिए और तब इस पर विश्वास कीजिए। जब तक आप परमेश्वर की वाणी पहचान नहीं लेते उसे कभी स्वीकार ना कीजिए। बड़ा ही आश्चर्य होता है यह देख कितने हैं जो इतनी सरलता पूर्वक इन झूठे शिक्षकों की शिक्षा को हुक और सिंकर सहित गटक रहे हैं। आज असाधारण मसीही कुछ भी स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं यदि उन्हें सजा संवार कर यह सब परोस दिया जाए। आज कल्ट्स कितनी उन्नति कर रहे हैं, दिन दूनी रात चौगनी। और कल्ट्स का गहरा प्रभाव देखना है तो स्मरण कीजिए उनका, जिन्होंने अपने लीडर के प्रोत्साहन पर विषपान कर लिया और सब के सब मृत पाए गए। जी हां, लीडर के सिवा सभी। क्या यह परमेश्वर का कार्य कहा जा सकता है? नहीं ना। तो देख लीजिए कैसी सरलता पूर्वक आज लोग झूठे शिक्षकों को स्वीकारते चले जा रहे हैं। पत्रस की चेतावनी की इन लोगों ने अवहेलना की है और अब वे शैतान की युक्तियों के शिकार बने हुए हैं। पत्रस चेतावनी दे रहे हैं, झूठे शिक्षकों से सावधान। प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर के नबियों ने शत प्रतिशत शुद्ध नबुवत की जो अक्षरशः पूर्ण होकर रही, किंतु अब समय है झूठे नबियों का। उस समय इसराइल में परमेश्वर के आयुक्त नबी भी थे और झूठे नबी भी। एक सशक्त उदाहरण है आहाब और यहोशापात द्वारा सीरिया के विरुद्ध युद्ध। आहाब राजा ने मार्ग निर्देश के लिए अपने नबी आमंत्रित किए थे। ये बाल देवता के उपासक थे। इन्होंने राजाओं से आग्रह किया कि वे युद्ध करने अवश्य जाएं, वे निश्चयतः विजयी होकर लौटेंगे। परमेश्वर परायण राजा यहोशापात तुरंत भाप गया कि ये परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं बोल रहे थे। अतः यहोशापात ने आहाब राजा से प्रश्न किया, क्या यहां यहोवा परमेश्वर का कोई नबी नहीं है? आहाब ने उत्तर दिया, हां है तो, परंतु मुझे उसे जेल में बंद रखना पड़ता है क्योंकि वो कभी भी मेरे विषय अच्छा नहीं कहा करता। देखा आपने, आज भी अधिकतर लोग ऐसे उपदेशक पसंद नहीं करते जो उनके दोष उन पर स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया करते हैं और उन्हें फटकार लगाते हैं। लोकप्रिय उपदेशक वे ही हैं जो श्रोताओं को पुचकारते रहते हैं, उनके द्वारा किए गए पाप को पाप नहीं भूल चूक का नाम देकर टालते रहते हैं। आहाब भी ऐसा ही राजा था। परमेश्वर का ये नबी मीकायाह सत्य ही कहा करता था और वो आहाब के लिए अप्रिय बन गया था। मीकायाह ने स्पष्ट किया था, यदि आप युद्ध करने जाते हैं आपकी मृत्यु निश्चित है। आहाब ने यहोशापात राजा से कहा, देखा वो कभी भी मेरे विषय अच्छा नहीं कहा करता, किंतु बुरा हुआ कि आहाब ने उसकी नहीं सुनी क्योंकि मीकायाह ने सत्य ही कहा था और आहाब राजा युद्ध में गया और खेत रहा। मीकायाह परमेश्वर परायण नबी था, किंतु वहीं बड़ी संख्या में बाल के नबी भी थे जिनकी ज्यादा सुनी गई। नया विधान में झूठे शिक्षकों के लिए जो यूनानी मूल में प्रयुक्त शब्द है वह है स्यूडो देदास कालोस। यह शब्द केवल एक बार इसी स्थान पर प्रयुक्त है। झूठे शिक्षक कलीसिया के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। विश्वास कीजिए, वे अत्यंत भयानक हैं। झूठा शिक्षक वह है जिसे सत्य ज्ञात तो होता है किंतु वह उसे जानबूझकर छुपाता चला जाता है। इसके पीछे उसकी कोई ना कोई गुप्त योजना अवश्य छुपी रहती है, शायद कोई स्वार्थ, शायद लोगों को प्रसन्न करना, अधिक धन कमाना, लोकप्रिय बने रहना, सुख सुविधा अर्जित करना इत्यादि, कुछ भी। किंतु उनके लक्षण यही होते हैं। कुछ अन्य हैं जो अज्ञानवश झूठी अर्थात त्रुटिपूर्ण शिक्षा दे बैठते हैं। कुछ शिक्षाएं ऐसी थीं जो प्रारंभिक नायकों अर्थात चर्च फादर्स द्वारा दी गई थी, किंतु आज हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। हम उन्हें झूठे शिक्षक नहीं कहेंगे, उन्होंने वे शिक्षाएं अज्ञानतावश दे दी थी। उनके विचार से तो वे ही सही शिक्षा दे रहे थे, किंतु झूठा शिक्षक वो होता है जो ये जानता है कि वो क्या कर रहा है और ये वो जानबूझकर किया करता है। पतरस कह रहे थे कि यह सब उनकी मृत्यु के पश्चात अवश्य होगा। एक और लेख है यहूदा का पत्र, जिन्होंने अपने पत्र में यही विषय उठाया। इन दोनों अभिलेखों में ऐसा साम्य है कि कुछ ने यह कहा कि दोनों ने एक दूसरे की नकल की है। हम इसे इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे। हमारी राय में हम इसे कहेंगे, जब परमेश्वर चाहते हैं कि कोई तथ्य बलपूर्वक प्रस्तुत किया जाए तब वह अर्थात परमेश्वर उसे दो अथवा अधिक व्यक्तियों के मुख से प्रस्तुत करवा दिया करते हैं। मसीह यीशु के बल देने के लक्ष्य रहते थे और वे कहते थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और जब ऐसा कहा जाता है तब आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप सावधान होकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक सुने कि अब आगे क्या कहा जाएगा। यह विषय परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु जब यहूदा ने पत्र लिखा, उन्होंने लिखा झूठे शिक्षक पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात ये आशा के विपरीत समय से पूर्व ही कलीसिया में घुस आए थे। देख रहे हैं आप कितना सशक्त है शैतान। और देखिए ना, तब से अब तक कलीसिया में ये झूठे शिक्षक अपना अड्डा बनाए हुए बैठे हैं, और कितने अबोध और असावधान मसीही हैं जो कि आंख मूंद कर उनकी शिक्षा को अपनाते चले जा रहे हैं, तथा पत्रस प्रेरित एवं पौलुस प्रेरित की शिक्षाओं की अवहेलना करते जा रहे हैं, और उनका दंड सुनिश्चित है। सुनिए, पत्रस प्रेरित यहाँ चेतावनी दे रहे हैं और वो लिखते हैं, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे नबी थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, और बहुतेरे उनकी तरह लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही प्रसारित की जा चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा किंतु नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया जिससे कि न्याय के दिन तक बंदी रहें। प्रिय श्रोता, प्रभु परमेश्वर इस वचन और संदेश के माध्यम से आपके हृदय के विचारों की सुरक्षा करते रहें।
श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को सुनने और हमें पत्र लिखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप में से कई श्रोताओं ने बाइबल पत्राचार अध्ययन करने की इच्छा जाहिर की है। जो श्रोता इस अध्ययन को करना चाहते हैं, वे कृपया हमें पत्र लिखें। याद रहे, अपना नाम और पता साफ साफ लिखें। पत्राचार अध्ययन के लिए जल्द से जल्द अपना नामांकन करवाएं। बाइबल पत्राचार अध्ययन के लिए हमारा पता है BCC पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको आशीष मिली होगी। यदि आप आज के बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम सत्य वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम सत्य वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।